اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب قلندر شعور کا صفحہ نمبر 51 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں آخری چیپٹر جو شروع ہوا وہ استغنا کا تھا۔ ابھی استغنا پہ بات شروع نہیں ہوئی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پہلے آپ کو ذرا لفظ استغنا کا تھوڑا سا اس سے متعارف کرا دوں۔ ہمارے یہاں یہ ترجمہ لیا جاتا ہے کہ استغنا کا مطلب ہے غنی ہونا۔ یہ لفظ غنی سے جوڑ دیا گیا ہے کہ غنائیت کسے کہتے ہیں، غنی کیا ہوتا ہے۔ اب غنی کا مطلب ہے بے پرواہ ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، کسی کا محتاج نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں اس لفظ کے، ذرا بناوٹ پہ غور کریں۔ استغنا، الف سین اور تے کو ہٹا دیں تو کیا بچا؟ غنا، غین نون الف۔ غنا سے لفظ ہے نغمہ، اسی سے لفظ ہے غنائیت۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ جب آواز سر میں نکلے تو اسے غنا کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو ہم غنا کی کیفیت میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں، یہ مفہوم کس قدر اصل بات کے قریب ہے وہ آپ خود طے کر لیجئے، کہ ایک ہے بے پرواہ ہونا اور ایک ہے کہ نہیں، فطرت کے ساتھ، اللہ کے نظام کے ساتھ ہم نے ہم آہنگ ہونا ہے، ہم نے سر میں آنا ہے۔ اب وہ بندہ جو مستغنا ہو گیا، غنائیت آ گئی اس میں، وہ کتنے مزے میں ہوگا۔ اب ایک بے سرا بندہ اور ایک سریلا بندہ، یہ فرق سمجھ لیجئے۔ میں نے اس لفظ کو اس لیے ذرا واضح کرنا چاہا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ہمیں متعارف کرایا جا رہا ہے استغنا سے، تو استغنا کا ایک یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے اب آپ جب اسے پڑھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا ہر عمل ایک حیثیت رکھتا ہے، پھر اس حیثیت میں معنی پہنانا جو ہے یہ طرز فکر میں تبدیلی ہے، اور یہ ہمارے اندر یہ یقین کا پیٹرن بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہونے سے پہلے کہیں موجود تھی۔ یعنی آپ ایک گھر دیکھتے ہیں تو اس گھر کو دیکھنے کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ اس گھر کا ایک نقشہ بنا تھا، یہ ساری چیزیں جو اس گھر میں مجھے نظر نہیں آ رہی وہ اس نقشے میں موجود ہیں، اور اگر میں اور زیادہ ایکسپرٹ بندہ بن جاؤں تو مجھے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ نقشہ بنانے والے نے کیا کچھ۔ یہ بند کر، نقشہ بنانے والے کے ذہن میں کیا کچھ تھا، اس نے کس سوچ کے تحت یہ نقشہ بنایا تھا۔ جب آپ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا ذہن سمجھنے لگیں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کے ساتھ سنکرونائز کرنا یا ہم آہنگ ہونا یا اس کے سر میں سر ملانا اور مستغنا ہو جانا، یعنی استغنا کا حاصل ہو جانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اسی ذہن کے ساتھ حضور مرشد کریم نے ہمیں یہ لوح قلم، لوح محفوظ کی بات سمجھائی کہ یہ سارا نقشہ جو ہے وہ لوح محفوظ کہلاتا ہے۔ اب کل ایک جو سوال پوچھا گیا کہ لوہے محفوظ جب سارے پروگرام اللہ نے طے کر دی تو ہمارے کرنے کا کیا رہا؟ نہیں، دیکھیے لوہے محفوظ جو ہے وہ बेसिक नक्शा है, बुनियादी नक्शा है, उस पे अमल करके हमने दिखाना है। उस अमल में यानी उस नक्शे में सारे ऑप्शंस रखे हुए। अगर आप उस नक्शे के मुताबिक या उसके खिलाफ काम करते हैं तो ये दोनों सूरतें रिकॉर्ड हो गई और ये किताबुल मरकूम कहलाती हैं, और आपको नताइज जो हैं वो किताबुल मरकूम के मुताबिक भुगतने हैं, लोहे महफूज के मुताबिक नहीं भुगतने। लोहे महफूज से तो कंपैरिजन होगा, अम्मा मन सकुलत मवाजीना हूँ, जो होगा मवाजना करने पे सकल में, यानी के जो जिसके किए हुए काम अकॉर्डिंग टू दी लोहे महफूज के प्रोग्राम होंगे वो सकल में होगा। फाम्मा मन खफत मवाजीना हूँ, जिसका मवाजना किया जाएगा। इसको कहा क्या गया था, अल्लाह ने क्या प्रोग्राम डिजाइन किया था और हमने उस पर कितना अमल किया, इसका मवाजना हमें खफत यानी शर्मिंदगी से दो चार करेगा अगर हमने पूरा ना किया होगा। हैविंग सेड दिस, अब आज की सफा नंबर 51 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका टॉपिक का उन्वान है कायनाती फिल्म। एक आदमी जब आकिल बाले और बाशऊर होता है तो उसे जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल की जरूरत पेश आती है, और वसाइल को हासिल करने के लिए रुपया पैसा एक मीडियम की हैसियत रखता है। अब ये दो जुमले जरा नोट करें कि हमारा जहन वसाइल के चक्कर में पड़ जाता है और वसाइल के लिए रुपया पैसा एक मीडियम की हैसियत रखता है। ये रुपया पैसा कब इजाद हुआ, ये इंसान की इजाद है, ये अल्लाह की इजाद नहीं है। अगर अल्लाह रब्बे करीम पैसा बनाते तो या तो ये दरख्तों पे लगता, पत्तों की सूरत में लगा होता, या इसका कोई खेती बाड़ी होती, कुछ तो होता। अल्लाह के यहाँ तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। ये इंसान ने एक मीडियम बनाया वसाइल को हासिल करने के लिए, और वसाइल अल्लाह ने आपके डिस्पोजल पे अजल से वैसे ही रखे हुए। अब आप गौर करें कि ये हमारा बनाया हुआ निज़ाम अल्लाह के अता करदा निज़ाम से किस कदर क्लैश में है। अब जरा सा इस जुमले पे गौर कर लें कि जब आप पैदा हुए तो सारे वसाइल ऑलरेडी मौजूद थे। मेन वसाइल क्या हैं, ऑक्सीजन या हवा, ये मेन वसीला है आपकी जिंदगी के लिए। वो अल्लाह ने वाफर तैयार की, पहले से तैयार की। दूसरा है पानी, वो भी मौजूद है। तीसरा है रोशनी, वो भी मौजूद है। चौथा है मट्टी, मट्टी यानी तमाम मादनियात, वो भी सब मौजूद है। तो इंसान को जब भेजा तो वो वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए भेजा या कि इंसान को वसाइल का मोहताज बनाने के लिए भेजा, ये है कलंदर शऊर जो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि इस तरह से सोच के देखें और खुद को अल्लाह के साथ, अल्लाह के जहन के साथ इस्तगना में ले आए। जब आपको ये क्लियर हो जाए, जहन में वाजे हो जाएगा कि जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल की जरूरत पेश आती है और वसाइल अल्लाह ने मुहैया किए हुए, हम उनको हासिल करने के लिए जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं इसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि हम रहते हैं मुआशरे में, तो मुआशरती तर्जों की हद में इसको, उन कवानीन को फॉलो करते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आगे मिसाल देखें जरा क्या दे रहे। हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया कि बात कुछ इस तरह से है कि एक आदमी के लिए पैदा होने वाली हस्ती ने, एक आदमी के लिए पैदा करने वाली हस्ती ने 1,00,000 रुपए मुतय्यन कर दिए। यानी पैदा करने वाले ने तय कर दिया कि भी इसको, इस गाड़ी को इतनी दूर जाना है तो इसको इतना पेट्रोल अलॉट कर दिया जाए। अगर उस गाड़ी के लिए उस बनाने वाले ने तय किया कि ये 1,00,000 किलोमीटर चले, तो वो 1,00,000 किलोमीटर के हिसाब से उसने उतना पेट्रोल भी तो दिया होगा। अगर एक गाड़ी फर्ज करें कि 10 मील चलती है 1 लीटर में, तो 1,00,000 का मतलब 10,000 लीटर उसके लिए मुख्तस हो चुके। अब गाड़ी परेशान होती रहे कि जी मुझे पेट्रोल कब मिलेगा, मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो वो अपने आप को वक्त ज़ाया कर रहा है। उसका काम है चलते रहना, पेट्रोल डालना उसको चलाने वाले का काम है। अब यहाँ पे मिसाल, चूँकि हमारी सोचें रुपए पैसे से रिलेटेड है, इसलिए रुपए पैसे की मिसाल दी जा रही है कि बात कुछ इस तरह से है कि एक आदमी के लिए पैदा करने वाली हस्ती ने 1,00,000 रुपए मुतय्यन कर दिए। इसी तरह जैसे 1,00,000 रुपए किसी बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। अब वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए आदमी कोशिश और जिद्दोजहद करता है। कोशिश और जिद्दोजहद जैसे जैसे कामयाबी के मराहिल तय करती है उसको रुपया मिलता रहता है। और करें, आपने क्या करना है, वसाइल को इस्तेमाल करना है और अपने मकसद को अचीव करने की कोशिश और जिद्दोजहद करनी है। कोशिश और जिद्दोजहद जूं जूं कामयाबी के मराहिल तय करती जाएगी, आपको वसाइल मिलते जाएंगे, यानी रुपया मिलता जाएगा, जरूरतें पूरी होती रहेंगी। लेकिन ये बात अपनी जगह अटल है कि अगर कायनाती फिल्म यानी लोहे महफूज में वसाइल का रिकॉर्ड और जरे मुबादला मुतय्यन ना हो तो डिस्प्ले होने वाली फिल्म नामुकम्मल रहती। नोट करें इस जुमले को कि वसाइल का रिकॉर्ड और जरे मुबादला दोनों चीजें तय है, मुतय्यन है। अब एक आदमी के नाम से बैंक में करोड़ों रुपए का जरे मुबादला मौजूद है, लेकिन वो उसे ना इस्तेमाल करता है और ना ही उसकी तरफ मतवज्जो होता है, तो ये जरे मुबादला उसके काम नहीं आता। फिर बाद में पछतावा होता है कि हो, मेरे तो इतने पैसे पड़े थे, मुझे तो तरीका ही नहीं पता था, मुझे तो पिन कोड ही नहीं पता था, बैंक का वो चेकबुक कैसे इस्तेमाल करनी है मैंने तो वो सीखा ही नहीं, तो कसूर किसका हुआ। अल्लाह का निजाम मुकम्मल है। अगर हमारी तवज्जो उसको इस्तेमाल करने की तरफ नहीं गई तो कसूर किसका हुआ। अल्लाह के निजाम को ना समझने की सजा किसको मिलेगी। अब हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि एक तर्ज फिक्र यह है कि एक आदमी बावजूद इसके कि उसका जमीर उसको मलामत करता है, वो अपनी रोजी हराम तरीके से हासिल करता है, रिस्के हलाल से भी वो दो ही रोटी खाता है और रिस्के हराम से भी वो शिकम सेरी ही करता है। गौर करें, यानी अल्टीमेटली तो आपने पेट ही भरना है ना, तो पेट भरने के लिए दो रोटी का एक मयार लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये बात मुसल्लमा है कि इस दुनिया में उसे जो कुछ मिल रहा है वो पहले से फिल्म की सूरत में मौजूद है। अब एक आदमी मेहनत मजदूरी करके जमीर की रोशनी में पैसा रुपया हासिल करता है, दूसरा आदमी जमीर की मलामत की परवाह न करते हुए रुपया हासिल करता है, दोनों सूरतों में उसे वही रुपया मिल रहा है जो लोहे महफूज पर उसके लिए जमा कर दिया गया है। ये बड़ी अजीब बात है और इंतहाई दर्जा नादानी है कि एक आदमी अपनी ही हलाल चीज को हराम कर लेता है। अब इसकी मिसाल में ये एक वाकया बयान हो रहा है, जर्फ और मुकद्दर। अब जर्फ बर्तन को कहते हैं, मुकद्दर तयशुदा चीज को कहते हैं कि एक आदमी का जेनी सांचा, जेनी बर्तन कितना है, कैसा है, और उसके लिए मकदारों का जो तायुन हुआ है वो क्या उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं। अब ये जर्फ और मुकद्दर दोनों चीजों की वजाहत इस एक छोटे से वाक्य से की गई है। حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے گھوڑے پر سوار کہیں تشریف جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ گھوڑے سے اترے، قریب سے ایک بدو گزرا، اسے آواز دے کر بلایا اور کہا تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑو، میں اتنے میں نماز ادا کر لوں۔ بدو نے حامی بھر لی، حضرت علی نے نماز کی نیت باندھ لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قائم کر کے دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ بدو نے سوچا موقع اچھا ہے، گھوڑا ہضم کرنا تو مشکل تھا، لگام لے کر چلتا بنا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا موجود ہے لیکن لگام اور بدو دونوں غائب۔ اتنے میں آپ کے خادم کمبر کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے انہیں 2 درہم دے کر کہا کہ بازار سے ایک لگام خرید لاؤ۔ کمبر بازار پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو لگام لیے کسی خریدار کا منتظر ہے۔ کمبر نے لگام کو پہچان لیا اور بدو کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے پوچھا اسے کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ کمبر نے جواب دیا حضور یہ آپ کے گھوڑے کی لگام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں؟ کمبر نے جواب دیا 2 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسے 2 درہم دے دو، اور فرمایا میں نے یہ سوچ کر اسے لگام پکڑائی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اسے اس کی خدمت کے عوض 2 درہم دوں گا۔ اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا پسند کیا۔ دیکھیں ذرا، یہ اس کی سوچ ہے، اس کا ظرف ہے، اس کا سانچہ فکر ہے، اس کا برتن یہ ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا گوارا کیا، پسند کیا۔ اب اسی طرح آپ اللہ کے نظام یعنی وسائل کی فراہمی کے نظام کی مضبوطی کا اندازہ کریں۔ یہ دوسرا واقعہ 7 چوروں والا۔ ایک شیخ صاحب تھے تو شیخ صاحب رحمت اللہ کو خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ ہر وقت اپنا احسان جتاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ہی رزق فراہم کرتا ہوں، اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کوئی طاقت ہمیں کھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی بچوں نے زیادہ پریشان کیا تو گھر چھوڑ کر ایک پرانے قبرستان میں جا بیٹھے۔ شام ہوئی تو ایک صاحب اپنی منت پوری کرنے کے لیے قبرستان میں موجود ایک مزار پر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد انہوں نے شیخ صاحب کو بھی تبرک دیا۔ شیخ صاحب کے انکار اور اس شخص کے اصرار نے عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ وہ یہ سمجھ کر کہ یہ شیخ کوئی دیوانے ہیں، انہوں نے ایک پڑیا میں کچھ لڈو لپیٹے اور ایک جھاڑی کے نیچے رکھ دیے کہ جب اس کے حواس درست ہوں گے تو کھا لے گا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو قبرستان میں چور داخل ہوئے۔ انہوں نے چوری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو شیخ علیہ رحمت جو ہیں یہ اٹھ کر بیٹھے۔ اب چوروں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ یہ شخص کوئی مخبر ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ کر پوٹلی میں باندھ لیا اور شیخ صاحب پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ شیخ صاحب کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔ اب اس تکرار میں چوروں میں سے ایک چور کی نظر جھاڑی کے نیچے رکھی ہوئی پڑیا پر پڑی۔ پڑیا کھول کر دیکھا تو اس میں 7 لڈو تھے۔ چور بھی اتفاق سے 7 تھے۔ چوروں کا سردار بولا کہ یہ شخص بھی کوئی چور ہے اور کوئی بہت ہی چالاک چور ہے، اس نے لڈوؤں میں یقیناً زہر ملا دیا تاکہ ہم سب کھا کر مر جائیں اور یہ ہمارے مال پر قبضہ کر لے۔ سردار نے کہا یہ سارے لڈو اسی کو کھلا دو تاکہ اس کی سازش خود اس کو ہلاک کر دے۔ 2 آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے، 2 آدمیوں نے دونوں ہاتھ پکڑے، 1 آدمی نے سر پکڑا، 1 آدمی سینے پر بیٹھ گیا اور 1 آدمی نے اس کا منہ کھول کر اس میں لڈو ڈال دیے۔ جب شیخ صاحب نے اس حال میں بھی لڈو کھانا نہ چاہا تو اس شخص نے زور زور سے تھپڑ رسید کیے اور انگلی کے ذریعے لڈو شیخ کے حلق میں اتار دیے۔ اس جبر و تشدد کے ساتھ सातों लड्डू शेख के पेट में पहुंच गए और ये कारनामा अंजाम देने के बाद वो सातों चोर सर पर पैर रखकर भाग गए। शेख साहब उठे और बड़ी हसरत और यास के साथ उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो आवाज आई, ऐ मगरूर बंदे घर चला जा, वरना रोजाना हम इसी तरह खिलाएंगे। अब गौर करें कि शेख साहब ने क्या गलती फरमाई, अल्लाह के निजाम से टकराने की कोशिश। भूख कौन लगा रहा है? अल्लाह। उसके वसाइल कौन दे रहा है? अल्लाह। आप शेख साहब ने कहा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, गोया वो तकाजों पे हावी होना चाह रहे थे। तकाजों पे हावी नहीं होना, उनको पूरा करना है, उनको उस लिमिट्स के साथ उस तरीके के साथ पूरा करना है जो एहसन हो। तो जब उन्होंने अपनी की तो देख लीजिए खुद निजाम फितरत जो है उसने हरकत में आके उसको सात लड्डू खिला दिए। अब इसी तरह एक और वाक्या देख लें, टोकरी में हलवा, कि एक शख्स बस्ती छोड़कर जंगल में चला गया, एक वक्त दो वक्त भूखा रहा कि जब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे कौन खिलाएगा, तीसरे वक्त भूख और प्यास की वजह से हालत गैर हो गई, दिल में ख्याल आया कि पानी पी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, करीब ही एक नहर थी, जब वो शख्स नहर के करीब पहुंचा तो पानी के बहाव के साथ एक टोकरी सी आती हुई नजर आई, तो जसूस पैदा हुआ कि इस टोकरी में क्या है। टोकरी को खोला तो उसमें एक परात थी, परात में बहुत सारा हलवा रखा हुआ था। अब वो मगरूर शख्स नहायत बेताबी का इजहार करते हुए सारा हलवा खा गया। हलवा खाने पानी पीने के बाद उसे ख्याल आया कि ये हलवा कहाँ से आया, पानी के बहाव के खिलाफ नहर के किनारे किनारे वो चलता रहा और बिलाखिर एक गांव में पहुंचा। वहां एक किसान ने बताया कि वो टोकरी सुबह बहुत सवेरे नंबरदार ने नहर में डाली थी, पता नहीं उसमें क्या था। अब मगरूर शख्स नंबरदार के घर पहुंचा, नंबरदार ने बताया कि रात हमारे यहाँ एक फकीर आया हुआ था, हमारा एक भाई बीमार था और उसके सारे जिस्म पर कोढ़ निकल आया था, जिस्म का तकरीबन हर हिस्सा गलने लगा था और खून और पीप बहती रहती थी। फकीर ने ये इलाज तजवीज़ किया कि हलवा पकाकर गरम गरम सारे जिस्म पर मल दिया जाए और सुबह मुंह अंधेरे जिस्म पर से सारा हलवा अलग करके टोकरी में रख कर पानी में बहा दिया जाए। अंदाजा करें कि पहले अल्लाह ने उसे खिलाया, फिर उसकी हकीकत वाजे की कि तुम इतनी मकरूह चीज हो कि ऐसी कराहत आमेज तरीके से, यानी ये कुदरत का निजाम इंसान के साथ वही कुछ करता है जो इंसान इस निजाम के साथ करने की कोशिश करता है। उस बंदे ने अल्लाह के बनाए हुए निजाम को निगेट किया, अल्लाह ने उसकी पिटाई कर दी। तो इसी तरह ये बातें समझने की बात है, इसको बहुत ही तवज्जो से और एहतियात से समझना है। ये दो वाक्यात सुना के हजूर मुर्शिदे करीम इरशाद फरमाते हैं कि रासिख फिल इल्म, लोगों के जहन में यकीन का ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो अपनी जिंदगी का हर अमल और जिंदगी की हर हरकत, हर जरूरत अल्लाह के साथ वाबस्ता कर देते हैं। ये किन का? रासिख फिल इल्म, वो लोग जो इल्म में रासिख हो जाते हैं, यानी पुख्ता हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, जो अपने इल्म पे पक्के हो जाते हैं वो अपने इस इल्म को इस्तेमाल करते हैं। और उनके अंदर पहला काम क्या होता है? यकीन का एक पैटर्न बनता है। जब आप किसी चीज़ का इल्म हासिल कर लेते हैं और उस इल्म पे पुख्ता होते चले जाते हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर यकीन का एक पैटर्न बन जाता है। मसलन जैसे ये साइंसदान जो हैं, इन्हें अपने मादी अफकार पे का इल्म है और ये उसी में रासख हो गए हैं, तो उनके अंदर यकीन का वो पैटर्न बन गया है कि भाई दौलत कमानी है, उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लोग अल्लाह के इल्म में रासख हो जाते हैं, फिर उनका ऐसा एक पैटर्न बन जाता है कि वो अपनी जिंदगी का हर अमल, हर हरकत और हर जरूरत को अल्लाह के साथ वाबस्ता कर देते हैं। यही पैगंबरों की तर्ज फिक्र है, ये है पैगंबराना तर्ज फिक्र। पैगंबराना तर्ज फिक्र का नाम कलंदर शऊर भी है, और ये जो तरीका इस्तेमाल है उस तर्ज फिक्र का, उसका नाम है इस्तगना। पैगंबरों की तर्ज फिक्र है, उनके जहन में ये बात रासख हो जाती है, यानी खूब अच्छी तरह जम जाती है, पुख्ता हो जाती है कि हमारे लिए अल्लाह ने जो नेमतें मखसूस कर दी हैं वो हमें हर हाल में मुयस्सर आएंगी। और ये यकीन उनके अंदर इस्तगना की ताकत पैदा कर देता है, ये उस बंदे को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है। कलंदर बाब औलिया रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि इस्तगना के बगैर यकीन पैदा नहीं होता, और यकीन की तकमील बगैर मुशाहदे के नहीं होती। यकीन मुशाहदे पे बेस करता है। जब तक आपको किसी चीज का अमली मुशाहदा नहीं होगा, आपका यकीन नहीं बनेगा, और यकीन नहीं आएगा तो इस्तगना कहां से आ जाएगा। और जिस आदमी के अंदर इस्तगना नहीं होता, उस आदमी का ताल्लुक अल्लाह से कम और मादी दुनिया, आगे देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, असफल से ज्यादा रहता है। ये है सारा खेल कि अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया तो आप मादी दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे। फरमाया कि रूहानियत ऐसे असबाक की दस्तावेज है, जिन असबाक में ये बात वजाहत के साथ बयान की गई है कि सकून के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर इस्तगना हो, यानी आपका जहन सुर में आ जाए। सकून इसी सुर का नाम है। इस्तगना के लिए जरूरी है कि कादर मुतलक हस्ती पर तवक्कल हो। तवक्कल को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर ईमान हो, और ईमान के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर वो नजर काम करती हो जो गैब में देखती है। बसूरत दीगर कभी किसी बंदे को सकून मुयस्सर नहीं आ सकता। आज की दुनिया में अजीब सूरत हाल है कि हर आदमी दौलत के अंबार अपने गिर्द जमा करना चाहता है, और ये शिकायत करता है कि सकून नहीं है। सकून कोई आरजी चीज नहीं है, सकून एक कैफियत का नाम है जो यकीनी है, और उसके ऊपर कभी मौत वारिद नहीं होती। ऐसी चीजों से जो आरजी हैं, फानी हैं, जिनके ऊपर हमारी जाहिरी आंखों के सामने भी मौत वारिद होती रहती है, उनसे किस तरह सकून मिल सकता है। इस जुमले पे तवज्जो दीजिए कि जो चीजें आरजी हैं, फानी हैं, और जिन पे हमारी जाहिरी आंखों के सामने भी मौत वारिद होती है, हम उनसे सकून की तवक्को रखते हैं। हमारी सोच का टेढ़ापन, देखें एक ही जुमले में कैसे उड़ा के रख दिया। इस्तगना एक ऐसी तर्ज फिक्र है जिसमें आदमी फानी और मादी चीजों से जहन हटाकर हकीकी और लाफानी चीजों में तफक्कुर करता है। यानी इस्तगना का गुर बता दिया कि इस्तगना हासिल करना है तो मादी और फानी चीजों पे तवज्जो ना दें, बल्कि अपनी तवज्जो को हकीकी और लाफानी चीजों की तरफ मबजूल कर दें। और जब ये तफक्कुर कदम कदम चलाकर किसी बंदे को गैब में दाखिल कर देता है, जब आप तफक्कुर करते हैं तो फिर आपको चीजों के पीछे उनका गैब भी दिखने लगता है। तो सबसे पहले जब यकीन उसके अंदर यकीन पैदा होता है, और जैसे यकीन की किरण दिमाग में फूटती है वो नजर काम करने लगती है, जो नजर गैब का मुशाहिदा करती है। अब देखिए कितना दुश्वार किया हुआ है कि जी गैब का नहीं देखा जा सकता, उन्होंने कितना सिंपल तरीका बता दिया गैब के मुशाहिदे का। गैब में, गैब के नहीं कहा, गैब में मुशाहिदे के बाद किसी बंदे पर जब ये राज मुनकशिफ हो जाता है कि सारी कायनात की बागडोर एक वाहिद हस्ती के हाथ में है, तो उसके तमाम तर जहनी रुझान उस जात पर मरकूज हो जाते हैं जो इस मरकजियत के बाद, और इस मरकजियत के बाद इस्तगना का दरख्त आदमी के अंदर शाख दर शाख फैलता ही चला जाता। यहाँ मेरा ख्याल है रुक जाते हैं, ये पेज नंबर 56 का आखिरी लाइन थी। तो इस्तगना पे हमने ये चैप्टर का आगाज किया। इस चैप्टर में आपने देखा कि इस्तगना से मुतालिक आपने बातों का मुतालिया किया कि कायनाती फिल्म में सारे वसाइल दिए हुए हैं, ये हम पे है कि हम उन्हें जायज तरीके से हासिल करें या नाजायज। अगर जायज तरीके से करेंगे तो आपको खुशी होगी, सुकून होगा। उसके लिए फिर वो मिसालें दी कि फितरत के निज़ाम के साथ नहीं टकराना, एक हज़रत अली का किस्सा, फिर सात चोरों की बात, फिर टोकरी में हलवा, और फिर असबात की दस्तावेज़ के ज़ेल में आखिरी पैराग्राफ्स में इस्तगना की पूरी बात को खोल के बयान कर दिया कि इस्तगना किस कैफियत को कहते हैं। ठीक हो गया जी? कोई सवाल?
जी सर।
सर एक सवाल मैं आपसे लूं।
जी इरशाद।
सर ये कायनाती फिल्म में जिन वसाइल की बात हुई है, ये सिर्फ माशी वसाइल ही हैं या सलाहियतों का भी इसमें है? क्योंकि सलाहियतें भी वसाइल में आती है ना।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये मुझे खुशी हुई कि आपने इतना वसी जरफी और वसी नजरी से सोचा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने, इसमें सब कुछ तय है। सलाहियतें अल्लाह ने आपके अंदर रख दी हैं, वसाइल बाहर। सलाहियतों का इस्तेमाल करना ना करना ये हम पे डिपेंड करता है, या हम पे है कि हम किस दर्जे सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं।
और ये जो जायज और नाजायज तरीके से यूज करने वाली बात है, तो इसको हम सलाहियतों से कैसे वो करें सर?
जायज और नाजायज की शर्त इसलिए, जी नाजायज, जायज और नाजायज की शर्त इसलिए कि हम मुआशरे में रह रहे हैं। देखे ना, वरना जब आदम अकेले थे तो सब चीजें उन्हीं की थी, यानी अल्लाह की, अल्लाह ने उन्हीं को अता की थी, वो जिस दरख्त से चाहे फल तोड़ के खाएं। लेकिन अब जब हम मुआशरे में आ गए, तो अब मैंने एक दरख्त लगाया, अब मैंने दरख्त इस आस पे लगाया कि इसके फल मैं तोड़ूंगा, चाहे मैं खुद खाऊं, बच्चों को खिलाऊं, ले लोगों को बांटूं, ये अलहदा बात है। लेकिन अब अगर कोई बंदा आके उस फल को तोड़ता है, तो मैं इसको जायज नहीं कहता, क्योंकि वो मेरा फल, मेरे लगाए हुए बूटे का फल तोड़ रहा है। तो ये हमारे मयार हैं मुआशरत के, ठीक है। जब हम अल्लाह की चीज मानते हैं तो कोई मायार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने, ये हजूर मुर्शिद करीम ने हमारा हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया कि हमें चलना तो अल्लाह के साथ है, लेकिन साथ में मुआशरती निजाम को भी मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया?
ठीक हो गया सर,
बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच सर।
वेलकम जी। और कोई?
जी अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
भजन, जब हम ये सब चीजों का तज़किरा करते हैं तो एक चीज है यकीन की राह में, वो होता है शक। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे जहन में शकूक और शबहात बहुत ज्यादा आते हैं,
जी हाँ
जैसे मैं अगर कोई कलंदर शोर हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे जिन कहता है ये सब फजूल बातें हैं, ये किताबों में बात लिखी हुई है, मैं उनको झटकता तो जरूर हूँ भी कुछ झटक दो, लेकिन फिर भी वो ना हैवी हो जाता है, इसका कोई कुड़िया बता दे।
बहुत आसान है, शक किसके अंदर आ रहा है? आपके अंदर आ रहा है ना, तो इस शक को किसने खत्म करना है? मैंने और आपने ही खत्म करना है। अगर मेरे जेन में आ रहा है तो मैंने ही खत्म करना है। अगर आप इस आस पे रहें कि कोई बाहर से करे तो वो तो नहीं होगा। तो इसको आपने शौरी तौर पे तोलना सीखना है। जब आप एक चीज को तोलना सीख लेंगे कि भाई ये शक है या यकीन है, पहले तो ये देखेंगे ना कि ये हमारे जेन की फॉरवर्ड मूव है तो वो यकीन है, अगर वो बैक स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब शक है, अगर उसमें परेशानी है तो ये शक है, अगर उसमें बेयकीनी है तो ये शक है। आप उसको इग्नोर कर दें और अपने यकीन को मालिश करें, उसको पॉलिश करें, उसको ज़रा उठाएं, उभारें। इंशाल्लाह जब आप यकीन पे फोकस करेंगे तो यकीन हावी हो जाएगा, आप जब शक को तवज्जो देंगे वो हावी हो जाएगा।
जी ठीक है सर,
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। काफ़ी है जी, हो गया मेरा ख्याल आपका वक्त पूरा।